आस्था बिना कुछ कहे सीधी वॉशरूम में जाने लगी। वो चेंज करना चाहती थी। वॉशरूम में जाकर उसने कपड़े बदले और कमरे में वापस आई। उसने देखा अरमान उसी पोजीशन में किंग चेयर पर बैठा हुआ था। आस्था थोड़ी घबरा रही थी कि वो आखिरकार अरमान को क्या बोलेगी, लेकिन फिलहाल उसे अरमान का सामना तो करना ही था। ये सोचते हुए आस्था अरमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथों को आपस में लपेट कर बोली, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तब अरमान ने आस्था से कोई सवाल नहीं किया, बदले में उसने उसका हाथ पकड़कर सीधा अपनी ओर खींच लिया। आस्था अरमान की गोद में जा गिरी। अरमान आस्था के बालों से खेलता हुआ बोला, ऐसा कौन सा राज है वाइफी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अरमान की ये कहते ही आस्था की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तब अरमान इरिटेट होकर बोला, जब भी मैं आपसे कुछ पूछता हूँ या आंखें बंद करने के लिए कहता हूँ तो आप अपनी आंखें बड़ी बड़ी क्यों कर लेती हैं? बताइए, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता और शायद मुझे पता होनी चाहिए? आस्था ने अरमान की ओर देखकर कहा, ये लॉकेट हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है जो उन्होंने हमें दी थी। हमें नहीं पता कि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप हमारा यकीन करें, हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। आस्था ने सच बोला था, लेकिन अरमान को आस्था की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो अरमान को आस्था की बातों पर यकीन करने से रोक रहा था। अरमान आस्था की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना आस्था। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अरमान सिंघानिया क्या कर सकता है। तब आस्था अरमान की ओर देखकर थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, लेकिन हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम आपसे सच कह रहे हैं। अरमान ने अचानक आस्था को अपनी गोद से उतार दिया और खड़ा हो गया। आस्था भी अरमान के साथ साथ खड़ी हो गई और उसको पीछे से अपनी बात समझाते हुए बोली, देखिए अरमान जी, प्लीज़ आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अचानक अरमान आस्था की तरफ पलटा। उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख थीं, लेकिन इससे पहले कि वो आस्था को कुछ कहता, आस्था की आंखें बोझल होने लगी। और जैसे ही आस्था की आंखें बंद हुईं, अरमान पूरी तरह से घबरा गया। उसने जोरों से आवाज लगाई, आस्था, आ आ आ आ आ। अरमान की इतनी भयानक आवाज़ सुनकर सभी लोग जो अपने अपने कमरों में चले गए थे पूरी तरह से हैरान हो गए। सब दौड़ते भागते अरमान के कमरे में जमा हो गए। अरमान ने सबकी ओर देखते हुए कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। रश्मि तुरंत आगे बढ़ते हुए बोली, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बाहर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आस्था को चेक कर लेती हूँ। रश्मि ने इशारा करके रौनक से अपनी फर्स्ट एड किट मंगवा ली और फिर वो आस्था को अच्छे से चेक करने लगी। सभी लोग बेसब्री से बाहर रश्मि के आने का इंतज़ार करने लगे थे। आखिरकार रश्मि अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही है और क्या हुआ है आस्था को लेकर, वो लोग जानना चाहते थे। सबके चेहरे पर परेशानी थी। करीब 10 से 20 मिनट के बाद रश्मि अरमान के कमरे से बाहर आई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने अरमान के उतरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए अरमान के सामने जाकर कहा, मुबारक हो अरमान, तुम पिता और आस्था माँ बनने वाली है। जैसे ही सब लोगों ने ये सुना, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरमान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हंसे, रोए, मुस्कुराए, खुश हुए या चिल्लाए या क्या करें। अरमान मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ डॉक्टर रश्मि को देख रहा था और अगले ही पल अरमान ने जाकर डॉक्टर रश्मि को जोरों से गले से लगा लिया। अरमान को ऐसा करते हुए देखकर सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आकाश को कुछ खास पसंद नहीं आया। वहीं ध्रुव और आहान दोनों एक दूसरे के गले मिलने लगे, क्योंकि ये सबके लिए बहुत बड़ी और खुशी की खबर थी। वहीं दादाजी की आंखें नम हो उठी, लेकिन नानी माँ के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आ गए। लेकिन राधिका और रौनक चहकने लगी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था और सबके सब जल्द से जल्द आस्था को देखना चाहते थे। वहीं अरमान की आंखें नम हो गई थीं। अरमान की आंखों की खुशी इस वक्त साफ दिखाई दे रही थी। सब एक साथ अरमान के कमरे में जमा थे और आस्था की ओर देख रहे थे। आस्था को भी होश आ गया था और उसे भी उसके माँ बनने की खबर मिल चुकी थी। आस्था के चेहरे पर भी नानी माँ की तरह अलग ही एक्सप्रेशन थे। आस्था के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस खबर से कुछ खास खुश नहीं है। अरमान ने बिना किसी की परवाह किए तुरंत आस्था को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया। इस वक्त अरमान कितना खुश था, ये बात उसके बॉडी एक्टिविटी से साफ पता चल रहा था। सबके सब अब आस्था और अरमान दोनों को मुबारकबाद देने लगे। अंत में दादाजी ने आस्था के सर पर हाथ रखा। वो अरमान के जिंदगी में जो खुशियाँ लाना चाहते थे, जो सुकून लाना चाहते थे, वो उसमें अब खुद को कामयाब हो गए थे। अब सब कुछ अच्छी तरह से हो गया है, इसका मतलब साफ है कि अब उसके पोते की जिंदगी में किसी तरह का कोई गम नहीं होगा और चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। वहीं अरमान ने आस्था को प्यार करने के तुरंत बाद एक्साइटेड फील करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी चाहिए। अरमान ने जैसे ही आस्था के माँ बनने की खबर सुनी, तुरंत ही अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था कि अभी तो आस्था के मां बनने की खबर मिली है और अरमान ने डिसाइड भी कर लिया कि उसकी बेटी होगी। तब आहान बिना सोचे टोकते हुए बोला, अरे भाई आप कितने ज्यादा बेसब्र हैं, अभी बच्चा नहीं आ रहा है, बेबी को आने में अभी पूरे 9 महीने लगेंगे। वैसे भी मैंने मूवीज में देखा है 9 महीने बाद ही बच्चे आते हैं। आहान ने पपी सा फेस बनाकर ये सारी बातें नासमझी से बोली। अरमान उसे घूरने लगा, मानो उसे उसका इस तरह से बीच में बोलना पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये अरमान का बच्चा था और उसका बच्चा अब 9 महीने में आने वाला था या आज आने वाला था इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। वो तो बस ये चाहता था कि उसकी बेटी हो। तब ध्रुव आहान को कोहनी मारते हुए बोला, तो यहाँ इस तरह से बच्चा 9 महीने बाद होगा या पहले होगा, ये बात एक्सप्लेन क्यों चल रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा हमारे आसपास कितनी सारी लेडीज खड़ी हुई हैं और सब हमें किस तरह से घूर रही हैं? रौनक तो आहान की बात सुनकर मन ही मन में हंसने लगी थी। वो जोरों से हंसना चाहती थी लेकिन वो वहां हंस नहीं पाती। वहीं आहान घूरकर रौनक को देखने लगा, मानो उसे कहना चाह रहा हो कि ज्यादा बत्तीसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नानी माँ आस्था के पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोली, ये नई खुशी आपको मुबारक हो बेटा। तब आस्था ने तुरंत नानी माँ को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से कुछ आंसू बह गए। उस वक्त आस्था के दिल की हालत काफी अजीब हो रही थी। एक तो लॉकेट का राज उसे जानना था, जिस तरह से अमरेंद्र सिंह राठौर ने ये बोला कि ये लॉकेट बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा कीमती है, तो ये बात आस्था को रह रहकर परेशान कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि जिस लॉकेट को वो मामूली लॉकेट समझकर शुरू से पहनती हुई आई है वो इतना ज्यादा महंगा होगा, इतनी ज्यादा उसकी कीमती होगी, इसका तो आस्था सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी। डॉक्टर रश्मि तब सबको टोकते हुए कहा कि आप इस तरह से आस्था के साथ मत रहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से आस्था के आसपास रहेंगे तो उसको घबराहट हो सकती है और इस हाल में हमें उसे सिर्फ और सिर्फ अच्छा माहौल देना होगा और एकदम अच्छे से उसका ख्याल रखना होगा। तब अरमान ने तुरंत सबकी ओर ऑर्डर देने वाले अंदाज में घूर कर देखा, मानो सबको कहना चाह रहा हो कि एक मिनट में सबके सब इस रूम से गायब हो जाओ। अरमान का इस तरह से देखना और सभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए एक एक करके वहां से गायब भी हो गए, क्योंकि उन सबको आस्था की उस वक्त बेहद फिक्र थी।
वहीं पर आकाश और सुमित के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट थी। कहीं ना कहीं अरमान जितने बुरे तरीके से मर्डर किया करता था, अब वो दुश्मनों को बड़ी ही बुरी मौत दिया करता था। ये बात वो लोग देख चुके थे, क्योंकि अरमान का उन्होंने हर तरह से खतरनाक रूप देखा था, तो शायद अब उन्हें लगा था कि अब जो वो सोच रहे थे अब शायद वो गलत होगा, क्योंकि अब अरमान वाकई आस्था को दिलो जान से प्यार करेगा और जब अरमान को बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद उसकी जिंदगी और भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो जाएगी। तो सभी के सभी अब अरमान के लिए काफी ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी ओर आस्था एक नज़र अरमान की ओर देखकर बिना एक्सप्रेशन के बोली, अरमान जी हम कुछ देर अपनी नानी माँ के साथ अकेले रहना चाहते हैं। आस्था ने जैसे ही अरमान से ये कहा, अरमान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि आस्था ने उसे एक ऐसी खुशखबरी दी थी जिसके बाद से वो आस्था को एक मिनट तो क्या एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन अब आस्था के इस तरह से बोलने पर कि वो नानी माँ से कुछ बातें करना चाहती है, अरमान ने नानी माँ को खा जाने वाली नज़रों से देखा, मानो आँखों ही आँखों में वो नानी माँ को जलाकर राख कर देगा। लेकिन फिलहाल वो आस्था की बात का मान रखते हुए वहां से बाहर निकल गया। तब आस्था की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और वो इमोशनली वीक होते हुए बोली, नानी माँ ये क्या हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारा बच्चा होने वाला है लेकिन हमारा दिल अंदर से खुश नहीं है, नानी माँ हम क्या करें, हमें बहुत बेचैनी हो रही है और आपको पता है आज क्या हुआ? ऐसा बोलकर आस्था ने जो भी अमरेंद्र ने उसके लॉकेट को लेकर बातें बोली वो सारी बातें उसने नानी माँ को बता दी थी। वहीं नानी माँ अपनी नज़रें चुराने लगी थीं। नानी माँ को इस तरह से नज़रें चुराता हुआ देखकर आस्था ने तुरंत उनके हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। नानी माँ आपको पता है ना हम माँ बनने वाले हैं, और अपनी कसम देते हुए बोली, नानी माँ प्लीज़ आप हमसे कुछ मत छुपाइए, और हम यहाँ इस शहर में अपने गुनहगारों को ढूंढने के लिए आए थे लेकिन अब तो हमें हमारा भविष्य हमारा लक्ष्य कहीं अंधकार में डूबता हुआ नज़र आ रहा है। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, और अगर ये लॉकेट इतना ज़्यादा महंगा है तो ये हमारे पास क्या कर रहा है? नानी माँ प्लीज़ एक आप ही हैं जो हमें हमारे सवालों के जवाब दे सकती हैं, नानी माँ प्लीज़। नानी माँ की आंखों में आज उस लड़के का चेहरा आ गया था जो लड़का उस वक्त नानी माँ को मंदिर में मिला था, और नानी माँ उस लड़के से छुपी हुई थी। अब नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़कर हल्का सा दबाते हुए उसे शांत होने के लिए कहा कि उसे इस तरह से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, और नानी माँ परवाह जताते हुए बोली, बेटी मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कुछ भी सच मत जानो और तुम अब अरमान के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी जियो और हंसी खुशी अपने बच्चों का लालन पालन करो और सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूलकर और अपनी जिंदगी को दुख के साथ नहीं खुशी के साथ शुरुआत करो। नानी माँ की बात सुन आस्था और भी ज्यादा तड़प गई थी और तुरंत अपना हाथ नानी माँ के हाथों से छुड़ाते हुए बोली, आखिरकार आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? नानी माँ, हमारे लिए सच जानना बेहद जरूरी है। आखिरकार क्यों हमारे माता पिता की जान हमारी आंखों के सामने गई है? क्यों ये बातें आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? हमारे लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बताइए ना प्लीज। नानी माँ प्लीज, ऐसा बोलकर आस्था नानी माँ की ओर देखने लगी थी और गिड़गिड़ाते बोली, अगर आपने ये कभी नहीं बताया कि आखिरकार उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्यों आपने हमें सब लोगों से छुपा कर रखा, क्यों हमें किसी को भी इस बात के बारे में नहीं बताने दिया कि किस इंसान ने हमारे माता पिता की जान ली थी जबकि हमने उसे अपनी आंखों से देखा था। नानी माँ आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? अरे हम रातों को चैन से सो नहीं पाते हैं। प्लीज नानी माँ बताइए हमें, प्लीज प्लीज, आखिर क्यों गई हमारे माता पिता की जान, बताइए बताइए ना। ऐसा बोलकर आस्था अब नानी माँ की ओर देखने लगी थी। तब नानी माँ कोल्ड वॉइस में सिर्फ एक ही लाइन बोली, तुम्हारे माता पिता की जान तुम्हारी वजह से गई है। ये बात सुनकर तो आस्था की आंखें ऐसी हो गई थीं मानो उसने कुछ और गलत सुन लिया हो। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी अपने माता पिता की जान उसकी वजह से गई थी। ये बात आस्था के सिर के ऊपर से जा रही थी और अचानक रोते हुए उसे जोरों से हिचकी आती है। आस्था की हिचकी बाहर खड़े हुए अरमान ने सुन ली थी। तुरंत दौड़कर अरमान अंदर आया और अंदर आते हुए आस्था को पानी पिलाने लगा। वहीं आस्था खाली खाली नजरों से नानी माँ की ओर देखे जा रही थी।